खंड खंड अनुभवों का मेरुदंड। हबीब तनवीर की रंग प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने विफलताओं, विरोधों और कटु आलोचनाओं की चौतरफा मार सहते हुए भी अपनी रचनात्मक जिद नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी विफलताओं के कारण को बारीकी से देखते परखते हुए उन्हें लगातार तराशते रहे और अंततः सफलता की राह स्वयं निर्धारित की। वे आज जिस शिखर पर हैं, वहाँ से अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो अनेक विस्मयकारी भंगिमाएँ उभरती हैं जो उनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर करती हैं जिनका समुचित आकलन किए बिना हम उनके रंग प्रक्रिया का कलात्मक विवेचन नहीं कर सकते। उन्होंने अपने रंग जीवन में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है। यदि उनमें पंडवानी, चंदैनी, भारत लीला, स्वांग, प्रहलाद नाटक जैसी लोक नाट्य शैलियों और विभिन्न प्रदेशों के आनुष्ठानिक प्रयोगों को भी शामिल कर ले तो यह संख्या 150 से अधिक होगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में की गई प्रस्तुतियों में सफल प्रस्तुतियों की संख्या अनुपात में बहुत कम है। इसके बावजूद इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उनकी सफल प्रस्तुतियों का मूल्यांकन समकालीन भारतीय रंगमंच की उन उपलब्धियों को इंगित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय नाट्य फलक पर पूर्व स्थापित और सर्वस्वीकृत नाट्य अवधारणाओं तथा मान्यताओं को कलात्मक चुनौती देने में समर्थ सिद्ध हुई है। खंड खंड अनुभवों के जिस दौर से गुजरकर हबीब तनवीर ने जो निजी मुहावरा स्थापित किया उनका विश्लेषण कुछ ऐसे प्रसंगों को उद्धृत करता है जो संभवतः अनछुए रह गए हैं। यह तो निर्विवाद है कि किसी भी रचनाकार की सभी कृतियां महान या कालजयी नहीं होती। अनेक कृतियों में से कुछ ऐसी होती हैं जो उस रचनाकार की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक होती हैं, लेकिन हबीब तनवीर के संदर्भ में यह बात इतनी साधारण नहीं है। वस्तुतः उनके आरंभिक प्रयोग भी उन्हें निरंतर ऐसी दिशा की ओर अग्रसर करने में सहायक हुए जो किंचित दोषों के परिष्कार के बाद महत्वपूर्ण सार्वदेशी और सार्वजनीन बनकर सामने आई। इस बात को रेखांकित करने की दृष्टि से उनकी रचनाकर्म की सामान्य प्रक्रिया की ओर नजर डालना श्रेयस्कर होगा। हर देश और हर काल में नवसृजन की पृष्ठभूमि में ऐसी रचनात्मक परंपराएं होती हैं जिनकी सामाजिक मान्यताएं और कलात्मक अवधारणाएं नए सृजन का आधार बनती है। महत्वपूर्ण रचनाकार अपने समय बोध और सामाजिक परिस्थितियों के निजी आकलन के निकष पर उन्हें चुनौती देते हैं और नई मान्यताओं तथा स्थापनाओं के लिए जोखिम मोल लेते हैं। उनका रचनाक्रम सामाजिक स्वीकृति या तत्कालिक सफलताओं की अपेक्षाओं से बहुत परे होता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त नाट्यलेख वर्डिंग फॉर गोडो के रचनाकार सैमुअल बेकेट के साथ भी यही हुआ था। वह नाटक लिखे जाने के वर्षों बाद तक विफल नाटककृति की तरह हाशिए पर पड़ा रहा और एक कारागृह में बंदियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद शनै शनै अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का नाटक बना। चेखव भी एक ऐसे अपवाद रहे जो केवल स्तानिस्लावस्की के प्रयोगों के बाद सदी के महत्वपूर्ण नाटककार के तहत स्थापित हुए। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि स्तानिस्लावस्की और बर्तोल्ड ब्रेस्ट के समय से पहले के नाटककार और नाट्य सिद्धांतकार आंतो आर्थो वर्षों तक हाशिए में पड़े रहे और फिर 3-4 दशकों के बाद उत्तर आधुनिकतावादियों की नई शाखा के कारण, नई व्याख्या के कारण 20वीं सदी के अंतिम दशकों में फिर चर्चा में आ गए। बहरहाल उपरोक्त बातें सिर्फ इसलिए कि रचनाधर्मिता को अपने ही समय में समाज स्वीकृत मिलना या न मिलना कलात्मक निकष की ओर हो सकता है, लेकिन हमें जहाँ लिखित साहित्य और प्रदर्शनकारी कलाओं में भेद करके देखना होगा, रंगमंच के क्षेत्र में नाट्यलेख के संदर्भ में यह बात उचित सिद्ध हो सकती है, लेकिन प्रदर्शन के स्तर पर उसकी सामाजिक स्वीकृति एक अनिवार्य तत्व है। विफल प्रदर्शन का कोई समुचित ब्यौरा न रहने के कारण उसकी तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा अनेक प्रसंगों में हुआ है। हबीब तनवीर की संपूर्ण रंग प्रक्रिया को विभाजित करते हुए भी यही लगता है कि वे सामाजिक स्वीकृति या अस्वीकृति के निकट से परे अपना समय तथा लोक के मूल्यों की स्थापना के लिए निरंतर संघर्षशील रहे। प्रदर्शन के स्तर पर अपनी विफलताओं को सफलता के द्वार तक ले जाने के लिए वे अपने ही मन की जमीन में छिपे हुए एक बीज को अंकुरित या पुष्पित पल्लवित होते देखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। इसके लिए उन्हें स्वयं की सृजनात्मक प्रक्रिया में निरंतर संशोधन करते रहना पड़ा। यह प्रक्रिया आज भी बरकरार है। उनकी कोई भी प्रस्तुति अंतिम नहीं होती, हर बार इसमें निरंतर कुछ जुड़ता या घटता चला जाता है। मूर्ति या चित्र या कविता की तरह वे अपनी किसी रचना को पूरा अंतिम नहीं मानते, इसीलिए उनकी प्रस्तुतियों में एक निरंतरता और सातत्य के दर्शन होते हैं जो उसे नित नवीन बनाए रखती है। इस संदर्भ में देखना यह होगा कि वे अपने सृजन कर्म के लिए प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करते हैं, वे किन तत्वों को पूरी तरह निकालते हैं या उन्हें नए संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए आकुल रहते हैं। अपने समय के स्थापित मान्यताओं और अवधारणाओं को चुनौती देने का उनका आधार क्या है और अंततः चुनौती देने रहने की यह प्रक्रिया किस तरह निरंतर बलौती होती जाती है। बम्बई से दिल्ली आने के बाद उनके सामने कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। बम्बई से जो कुछ वो अपने साथ ले आए उसमें सबसे अधिक मूल्यवान थी उनके रंगानुभवों की पिटारी। इस पिटारी में अनुभवों के छोटे छोटे टुकड़े थे। प्रहलाद सहनी और दीना पाठक के साथ नाटक करते रहने के दौरान ही यथार्थवादी रंगमंच के अतिरिक्त तमाशा, लावड़ी, भवाई जैसी शैलियों तथा गुजराती, मराठी, कोंकणी लोकगीतों की समृद्ध परंपरा से उनका परिचय हुआ। शांति दूत कामगार जैसे नुक्कड़ नाटकों को लिखने और निर्देशित करने के दिलचस्प अनुभव उनकी पिटारी में थे। इप्टा के भंग हो जाने के बाद उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स तथा अन्य अनेक संस्थाओं के लिए भी नाटकों का निर्देशन किया, लेकिन अपने इस रचनाकर्म से उन्हें सृजनात्मक संतोष नहीं मिला। इसी की खोज में वे दिल्ली आया और एक ऐसी जमीन तलाश कर रहे थे जहां वे अपने पांव मजबूती से जमा कर सृजनात्मकता के उस बीज का रोपण कर सके जो उनके अनुभव की पिटारी की सबसे मूल्यवान वस्तु थी। दिल्ली का माहौल उनके लिए एकदम नया था। नए पुराने साथियों और परिचितों से मिलकर वे हालात का जायजा ले रहे थे और गुंजाइश तलाश रहे थे। तभी उन्हें अपनी पूर्व परिचिता जर्मन महिला एलिजाबेथ गावा का निमंत्रण मिला, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। उनकी शिक्षण पद्धति सामान्य प्रचलित पद्धति से एकदम भिन्न थी। हबीब तमीर को इसमें कई चुनौतियों की झलक मिली। इस संबंध में उनका कहना है, मैंने बच्चों के लिए बनाए चित्र, मिट्टी की चीज़ें, उनके लिखे सपनों और कहानियों को देखा, वे अद्भुत थी। उन्हीं को बच्चों के लिए नाटक में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। वहाँ बच्चों के साथ काम करते हुए हबीब तमीर को जो नए अनुभव प्राप्त हुए, वर्षों बाद उनकी सफल प्रस्तुतियों का मूलाधार भी बने। इनमें सबसे प्रमुख तत्व था नए किस्म के आंसु अभिनय की शक्ति और सामर्थ्य। इससे पहले वे इप्टा में जादू की कुर्सी जैसे अत्यंत दिलचस्प प्रयोगों में भागीदारी कर चुके थे जो पूरी तरह इम्प्रोवाइजेशन पर आधारित थे, लेकिन यह अनुभव उससे एकदम अलग और नए किस्म का था। जादू की कुर्सी जैसे नाटकों में एक प्रस्तावना बिंदु होता था और यह भी प्रायः निश्चित होता था कि उसके माध्यम से संप्रेषित क्या किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे संप्रेषित किया जाए, इस प्रक्रिया में सभी कलाकार अपना योगदान देते थे। उन सब की मानसिकता एक सी थी, प्रयोजन निश्चित था, इसलिए उनके इम्प्रोवाइजेशन में कलात्मकता और बौद्धिकता के तत्वों का समन्वय होता था और उसका एक स्तर भी था, आपस में स्थापित संवाद भी था और भी अपने साथी कलाकारों की क्षमताओं, सीमाओं से अच्छी तरह परिचित भी थे। लेकिन बच्चों के साथ नाटक करते हुए इम्प्रोवाइजेशन एक दूसरा मोड़ ले गया। बच्चों के साथ नाटक करते हुए प्रस्तावना बिंदु तो निश्चित होता था, लेकिन अंतिम परिणति निश्चित नहीं होती थी। इस किस्म के आंसू अभिनय या इम्प्रोवाइजेशन की जमीन एकदम नई और चुनौती भरी थी। सच तो यह कि बच्चों के साथ नाटक करते हुए भी उनके मन की जमीन में जो अंकुर फूटा, सृजन प्रक्रिया की दृष्टि से वही आगरा बाजार में कुशोभित पल्लवित हुआ। जब हबीब तनवीर बच्चों के साथ नाटक करने पूरी तरह मुब्तिला थे, तभी उन्हें एक पुकार सुनाई दी। सन 1954 की बात है, जामिया मिलिया में उर्दू के लोकप्रिय कवि नजीर अकबर आबादी का जन्म शताब्दी समारोह मनाए जाने का निश्चय किया। उर्दू के जाने माने लेखक अथर परवेज इस समारोह को यादगार और दिलचस्प कार्यक्रम के रूप में पेश करना चाहते थे। वे हबीब तनवीर को अरसे से जानते थे। हबीब तनवीर की शायरी और उनके खुशनुमा तरन्नुम के साथ साथ उनके अभिनय कौशल और निर्देशन के गुणों से भी परिचित थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस बात से मुतासिर थे कि नज़ीर अकबर आबादी की शायरी को आम तक पहुंचाने में हबीब तनवीर सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। अथर परवेज ने जब हबीब तनवीर को अपने मन की बात बताई तो वे तुरंत सहमत हो गए। हबीब तनवीर के इस अनुभव का विस्तृत विवेचन नज़ीर के नज़रिए पर शीर्षक अध्याय में किया गया है। बहरहाल, आगरा बाजार की प्रस्तुति ने हबीब तनवीर के अंतर्मन में उमड़ते उमड़ते एक सवाल का निश्चित जवाब दे दिया था। वह यह कि स्थापित रंगमंचीय रूढ़ियों को तोड़कर यदि जनता तक अपनी बात पहुंचानी है तो रंगमंच पर एक ऐसा उन्मुक्त और सहज वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जो संगीत और कविता के श्रेष्ठ गुणों को आत्मसात करके नाटक के संप्रेषणीयता को समृद्ध कर सके। आगरा बाजार एक छोटे से रूपक से बढ़कर कैसे एक भरपूर नाटक की शक्ल अख्तियार कर पाया अलग कहानी है। लेकिन इसी आगरा बाजार की प्रस्तुति के दौरान उनकी मुलाकात बेगम कुदसिया जैदी से हुई। बेगम जैदी एक अत्यंत संभ्रांत महिला होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति, साहित्य और रंगमंच में विशेष दिलचस्पी रखने वाली बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महिला थी। उन्होंने हबीब तनवीर के साथ हिंदुस्तानी थिएटर की स्थापना की और देश के अनेक नगरों में आगरा बाजार के अत्यंत सफल प्रदर्शन हुए। हबीब तनवीर ने हिंदुस्तानी थिएटर के लिए सबसे पहले शुद्र के संस्कृत नाटक मृत चकटकम का रूपांतरण मिट्टी की गाड़ी को चुना। वस्तुतः मिट्टी की गाड़ी को मंचित करने का सपना वो अनेक वर्षों से सजे हुए थे। यूरोप की यात्रा के दौरान भी उन्होंने इस नाटक को विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने के अनेक प्रयत्न किए, पर वे सफल न हो सके। वारसा में इसे पोलिश भाषा में मंचित करने की योजना बन भी गई थी, लेकिन ऐन मौके पर प्रोड्यूसर ने अपनी नीयत बदल दी और हबीब तनवीर के हाथ से वह अवसर भी निकल गया। हाँ, वारसा में टेलीविजन के लिए उन्होंने मिट्टी की गाड़ी का एक छोटा सा दृश्य अवश्य प्रस्तुत किया। इस संबंध में उन्होंने कहा, मिट्टी की गाड़ी को मंचित करने की चुनौतियाँ बिल्कुल अलग किस्म की थी। ऐसा नहीं कि इस नाटक का मंचन इससे पूर्व हिंदी में नहीं किया गया, लेकिन पूरी तरह पाश्चात्य रंग पद्धति और अभिनय शैली का अनुकरण करते हुए इसके जितने भी प्रयोग हुए वे नितांत विफल रहे थे। प्रबुद्ध दर्शकों और रंगकर्मियों को इन प्रयोगों से किसी प्रकार का संतोष प्राप्त नहीं हुआ था। हबीब तनवीर जब यह नाटक उठाया तो दर्शकों और समीक्षकों के मन में जिज्ञासाओं का उठना स्वाभाविक था, खासतौर से उस वक्त जबकि ये 3 वर्ष तक विश्व रंगमंच का अध्ययन, मनन और दर्शन करके लौटे थे। यूरोप की यात्रा से लौटने के बाद उनकी इस पहली प्रस्तुति में ही हबीब तनवीर ने अनेक प्रयोग किए। आंचलिक कलाकारों की सहजता और अभिनय क्षमता का आस्वाद उन्हें आगरा बाजार में मिल चुका था, इसलिए अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने मिट्टी की गाड़ी के लिए कुछ छत्तीसगढ़ी कलाकारों का चयन किया। चयन की इस प्रक्रिया के संबंध में अभी तमिल का कहना है, जब मैं 1958 में यूरोप से वापस आया था, मुझे कटिक शुरू करने के पहले तो मैं अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर रायपुर गया था। वे गर्मियों के दिन थे। मैंने सुना कि वहाँ हाई स्कूल के मैदान में नाचा होने वाला है। नाचा छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य का एक रूप है। वह 9 बजे शुरू होने वाला था। मैंने उसे पूरी रात देखा, जो सामान्यतः नाचा की प्रस्तुति की अवधि है। उसके बाद मुझे इंडो सोवियत मैत्री द्वारा कुछ विषय भूलने के लिए राजानंद गांव जाना था। वहाँ उन्होंने मेरी यूरोपियन यात्रा के विषय में जानना चाहा। मैंने अपनी हंगरी की यात्रा का विवरण दिया और उदाहरण के रूप में एक छत्तीसगढ़ी गीत भी गाया। समारोह के अंत में भांगी आंखों वाला एक स्याह व्यक्ति, जिसकी एक छोटी सी घनी दाढ़ी थी, मेरे पास आया। मुझसे कहा, मेरे घर चलिए। यह लालू राम था। उसे मेरा लोकगीत पसंद किया था। मैं उसके घर गया। उसने मुझे गांजा दिया। हमने साथ साथ पिया और उसने मुझसे बहुत सारे गीत सुने। उसने भी बहुत से लोकगीत सुनाए। वह छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे गायकों में से एक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। यह बैठक पूरी रात चलती रही तो मैंने अपने दल के 6वें सदस्य के रूप में लालू राम को भर्ती कर लिया। ये 6 लोग दिल्ली आए। उन्होंने मिट्टी की गाड़ी में भाग लिया। मिट्टी की गाड़ी की पहली प्रस्तुति में हबीब तनवीर ने भारतीय संगीत और नृत्य परंपराओं का प्रयोग बड़ी सूझबूझ के साथ किया, लेकिन यह सूझबूझ नाटक की सफलता में सहायक सिद्ध नहीं हुई। उनका यह अनुभव अपने शास्त्रीय परंपराओं के अनेक प्रसंगों को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए, हमारे शास्त्रीय संगीत के रचना विधान, हमारे शास्त्रीय संगीत में शब्दों और शब्दों से कहीं अधिक स्वरों का दोहराव एक विशेष ध्वनि प्रतिध्वनित करता है। गायक एक ही पंक्ति की अनेक आवृत्तियों के साथ प्रस्तुत करता है। श्रोता दर्शक उसके शब्दों से इतर उन स्वरों के सारे शब्दों के अर्थों तक या स्वरों के अभिव्यंजना तक पहुँचता है। अंततः एक ही पंक्ति को अनेक बार से अनेक प्रकार से कहे जाने पर दर्शक स्वर संसार की रचना विमग्ध हो जाता है। ये स्वर रचनाएं शब्दों के नए अर्थों तक श्रोताओं को ले जाती हैं। जाने पहचाने से शब्दों की परतें खुलने लगती हैं तो श्रोताओं को एक नितांत नया अनुभव का बोध होता है। हमारी शास्त्रीय नाट्य शैली कुटियाट्टम में भी ऐसा ही होता है। मणिमाधव या अमानूर माधव चाक्यार जब एक ही श्लोक के अनेक व्याख्याएं करते हुए अपने अनुभव के माध्यम से एक नए अर्थ संसार तक दर्शकों को ले जाते हैं तो दर्शकों को वह सुख अनिर्वचनीय होता है। हबीब तनवीर इस अनिर्वचनीय सुख से पूरी तरह परिचित थे और अपने नाटक के माध्यम से दर्शकों को इसी प्रकार के अनुभव तक ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मिट्टी की गाड़ी में स्वरों की आवृत्ति का प्रयोग किया। अलग अलग मनस्थितियों के लिए एक ही शब्दावली, फिर भी स्वर रचना, लय और ताल में भरपूर विविधता। लेकिन इस विविधता के बावजूद स्वरों की शब्दों की पुनरावृत्ति और स्वरों की आवृत्ति नाटक में सामान्य दर्शकों के लिए रस अवरोधक बन गए। हमारे शास्त्रीय संगीत की एक परम विशेषता तथा उपलब्धि नाटक में समाहित होने पर केवल तिरोहित ही नहीं हुई बल्कि उसने ऐसा स्वादन में भी बाधा उत्पन्न कर दी। नाटक में शास्त्रीय संगीत के प्रयोग को लेकर संभवतः शताब्दियों के बाद हबीब तनवीर की पहली पकड़ थी। भले ही उनके इस प्रयोग ने दर्शकों पर अपेक्षित प्रभाव न दिखाया हो, लेकिन उन्होंने इस अनुभव से जो प्राप्त किया वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी की गाड़ी के प्रथम प्रदर्शन से हबीब तनवीर ने जो दूसरा सबक लिया था वह था, प्रचलित रंग पत्रियों के मिश्रित स्वरूपों के समन्वय का प्रयोग कैसे नहीं किया जाना चाहिए। अपने यूरोपीय रंग अनुभवों को साथ लेकर आए थे। यह तो उनके मन के निश्चित था कि अपने मुहारों के लिए अपनी जमीन ही उन्हें शक्ति देगी, लेकिन इसके बावजूद आधुनिकतम रंग तकनीकों का उनके मानस पर प्रभाव तो पड़ा ही था। रंग पद्धतियों के मिश्रित रूपों के प्रयोग से यह नाटक किसी एक निश्चित शैली का समन्वित आस्वाद देने में विफल हो गया। उनकी समस्या का एक बड़ा कारण भी था। शहरों के प्रशिक्षित और संभ्रांत कुलों के अभिनेताओं तथा ग्रामीण क्षेत्र के पारस्परिक अभिनय में रचे वैसे कलाकारों की अभिनय पद्धति में जमीन आसमान का फर्क था। इसका समाधान भी आसान नहीं था। उनकी दूसरी बड़ी चुनौती थी कि एक नाटककार की शैली क्या हो। यह तो उनके मन में पूरी तरह स्पष्ट आकर पाश्चात्य यथार्थवादी अभिनय पद्धति इस नाटक के लिए कतई उपयुक्त नहीं। फिर उसका विकल्प क्या होगा। नाटक हिंदी भाषा में था और संस्कृत नाटकों को किसी भी भारतीय भाषा में मंचित करने कोई प्रमाणिक या परंपरागत शैली प्रचलन में नहीं थी। हिंदी भाषी क्षेत्र में नौटंकी सबसे प्रमुख परंपरागत शैली थी, लेकिन उस शैली में नाटक को पूरी तरह निबद्ध करने पर उसकी साहित्यिक और मंचगत विशेषताओं को पूरी तरह खंडित हो जाने की संभावना थी। इसे अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर उन्हें लगा कि भले ही भारतीय प्रदेशों में प्रचलित विभिन्न परंपरागत शैलियों में रंग रूप भेद तो नजर आते हैं, किंतु उनकी प्राणदायिनी शक्ति एक ही है जो कहीं न कहीं नाट्यशास्त्र के प्रमुख सूत्रों से उत्प्रेरित है। इसलिए उन्होंने यह जोखिम उठाना युक्तिसंगत समझा कि किसी एक परंपरागत शैली पर पूरी तरह आश्रित न रहकर विभिन्न शैलियों के उन तत्वों का प्रयोग किया जाए जो कहानी को पूरी शिद्दत के साथ कलात्मक रूप में कह सकें। अभिनेताओं के विभिन्न स्तरों को देखते हुए भी यह संभव नहीं था कि पूरे नाटक को किसी एक पारंपरिक शैली में निबद्ध किया जा सके। छत्तीसगढ़ के आंचलिक कलाकारों के साथ भरतनाट्यम, जिसमें विशुद्ध शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना भी थी और यथार्थवादी शैली में अभिनीत करने जाने वाले कलाकार भी साथ थे। तीसरी बात यह थी कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखे गए संस्कृत नाटक को किस तरह आधुनिक दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया जाए, उनकी प्रासंगिकता पूरी तरह उभर कर सामने आ सके। इन्हीं सब तथ्यों को सामने रखकर उन्होंने तय किया कि इस नाटक को ऐसी मिश्रित शैली प्रस्तुत किया जा सके जिससे पारंपरिक शैलियों की विशिष्टता भी उभरे और दर्शकों को इस नाटक के माध्यम से भारतीय रंग परंपरा का नया आस्वाद भी प्राप्त हो सके। लेकिन इस संदर्भ में उन्होंने अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अभी तनवीर के मन में झांक कर उनकी रंग चिंताओं को समझकर प्रस्तुति का मूल्यांकन करने वाले प्रबुद्ध दर्शकों ने उसका मूल्यांकन अवश्य किया, लेकिन सामान्य प्रेक्षक वर्ग इस प्रस्तुति से पूरी तरह असंतुष्ट नजर आया। छोटे मोटे अनेक अवसरों पर रही तनवीर को ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ा जो उनके रंगकर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनके आरोपों में तर्क नहीं था, पर नए प्रयोगों के प्रति आक्रोश और विरोध अधिक था। फिर भी नए प्रयोगों को स्वीकार करने के लिए उनका मन प्रस्तुत नहीं था। यही है अभी तुम्हें के रंग व्यक्तित्व का विशेष पहलू। अपनी विफलताओं से निरंतर सीखते हुए अपना रास्ता खुद बनाते रहने की यातना भरी यात्रा और अंततः शिखर की ओर बढ़ जाने का अनवरत प्रयास। हबीब तनवीर अपनी विफलताओं का मूल्यांकन स्वयं करते हैं। उन्होंने बार बार उन कारणों को खोजा है जो दर्शकों की दृष्टि में उनकी प्रस्तुतियों की सफलता में बाधक रहे हैं। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो ठीक है, आने वाला समय मुझे सही सिद्ध करके रहेगा। वे लगातार अपने रंग कर्म से जुड़े रहे हैं और कुछ घटाते रहे, उसी कारण वे निरंतर ताज़ा बने रहे। बाद में उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर उसमें अनेक परिवर्तन किए। बाद के प्रदर्शनों में पूरा का पूरा नाट्य दल छत्तीसगढ़ी अभिनेताओं का था। वसंत सेना जैसे राजनीतिक की भूमिका के लिए भी शास्त्रीय नृत्यांगन की बजाय फिदाबाई को लिया गया। प्रस्तुति में सहज रूप से शैली बदलता उभर कर आई। नाटक की भाषा हिंदी की बजाय छत्तीसगढ़ी कर दी गई, जिससे आंचलिक अभिनेता पूरी सहजता और क्षमता के साथ अभिनय करने लगे। नाटक जीवंत उठा। मुद्राओं और भंगिमाओं की कलात्मकता और सहजता ने दर्शकों को अत्यंत आह्लादकारी आस्वाद दिया। दर्शक वर्ग ही नहीं, देश के वरिष्ठतम संस्कृत रंगकर्मियों ने भी इस प्रस्तुति की पूरी पूरी प्रशंसा की। नाट्यशास्त्र के प्रखंड विद्वान अभिनेता निर्देशक और समीक्षक डॉक्टर कमलेश दत्त त्रिपाठी ने इस प्रस्तुति के बारे में कहा, संभवतः हिंदी भाषी क्षेत्र में पहली बार ऐसा प्रयोग रंग निर्देशक हबीब तनवीर ने किया। 1957-58 में मिर्च कटकम के रूपांतरों को लोक रंग शैली के मुहावरे में ढाल कर की गई उनकी प्रस्तुति संस्कृत नाटक और पारंपरिक रंग शैली के सामंजस्य का नया प्रयोग था। तनवीर का मिर्च कटिक पर आधारित यह प्रयोग बाद के दशकों में भी जारी रहा और छत्तीसगढ़ी में मिर्च कटकम का यह रूपांतर छत्तीसगढ़ी की नाचा लोक रंग शैली तथा लोक संगीत के उपयोग से संस्कृत नाटक के पुनराविष्कार का एक अत्यंत सार्थक समकालीन प्रयास रहा है। तनवीर ने अपने प्रयोग में लोक रंग शैली के अधिकाधिक सार्थक प्रमाणिक और सृजनात्मक प्रयोग करने के लिए लोक कलाकारों के साथ ही प्रयोग किए। इसलिए लोक भाषा, लोक रंग शैली और लोक संगीत की परिसीमाओं में आलेखित और आरचित मृच्छकटिक समकालीन भारतीय वास्तविकताओं की व्याख्या से जुड़कर आज के रंगकर्म के साथ संस्कृत नाटकों के संबंध को परिभाषित करने में सफल रहा। मिट्टी की गाड़ी की ऐतिहासिक सफलता अपने दुसाधे चरणों से होकर गुजरी है, उसका आकलन सहज नहीं। छत्तीसगढ़ के आंचलिक कलाकारों की भाषा अपनाकर उन्होंने अभिनेताओं की सहज अभिव्यक्ति की रक्षा की जो पहली प्रस्तुति में संभव नहीं हो सकी थी। उनकी अपनी भाव भंगिमाएं, अपना संगीत, अपना रंग कौशल संस्कृत के शासकीय नाटकों को मंचित करने के लिए एक नितांत नई रंग शैली पुनर्स्थापित करने में सहायक बने। हबीब तनवीर को एक नितांत निजी मुहावरा खोजने में सफलता मिली। यह रंग शैली या मुहावरा नाचा के अनेक तत्वों का समायोजन करने के बावजूद नाचा शैली से निबद्ध नहीं था। अनेक भारतीय रंग शैलियों का समन्वय स्पष्टता पर लक्षित होता है। यह हबीब तनवीर के सृजनात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। अभिनय की पारंपरिक पद्धति का परिष्कार करने का कार्य सरल और सहज नहीं था, किंतु इस दृष्टि से भी हबीब तनवीर कदम ब कदम आगे बढ़ते रहे। उनका हर नया कदम नई किंतु ठोस जमीन की तलाश करते हुए बढ़ा है। फिर नई रंग दृष्टि के कारण उन्होंने बहुत से जोखिम उठाने पड़े, लेकिन उन कठिनाइयों से विचलित न होकर उन्होंने अपने रंगकर्म में जिस प्रकार समकालीन भारतीय रंगमंच को समृद्ध किया है वह अत्यंत विस्मयकारी है। इस कार्य में हबीब तनवीर के योगदान को रेखांकित करते हुए डॉक्टर कपिलाबाद सैन ने कहा, नौटंकी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, उसके अभिनेताओं में उच्च कोटि के कलाकार भी हुए हैं और फूहड़ तथा निकृष्ट कोटि के नाटककर्मी भी। नौटंकी की प्राणवत्ता ने हबीब तनवीर जैसे आधुनिक नाटककारों और निर्देशकों को आकृष्ट किया। उन्होंने मिर्च कटकम जैसे संस्कृत नाटक को भी नौटंकी की शैली प्रस्तुत किया है। नौटंकी एक जीवंत नाट्य विधा के रूप में जीवित रह सकेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि आधुनिक नाट्य निर्देशक इसे सामाजिक नाटक का एक सशक्त माध्यम बनाने में कहाँ तक सफल हो सकेगा। साथ ही इस पर भी कि नौटंकी से जुड़ी परंपरागत कलाकार नौटंकी की शैलीगत विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए कहाँ तक इसे बदलने और विकसित करने में सफल होंगे। हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी ग्रामीण नाट्य रूप माच या नाचा को भी आधुनिक और सुपरिष्कृत प्रस्तुति के माध्यम बनाया है। उनके अभिनेताओं ने जिस वैविध्य और कौशल का परिचय दिया है उसे सिद्ध कर दिया है कि ग्राम और कस्बाई रंगमंच एक संवेदनशील नाट्य निर्देशक का संरक्षण पाकर एक आधुनिक और सही अर्थों में धरती से जुड़े भारतीय रंगमंच का आधार बन सकता है। शहरी और आंचलिक कलाकारों के बीच एक सुसंगत संभाव बनाने में उन्हें अनेक वर्षों तक प्रयत्न करने पड़े। गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, चरणदास चोर, बहादुर कालरी, देख रहे हैं नए जैसे नाटकों की सफलता के जो सूत्र उन्हें हाथ लगे थे उनकी अनुभव कथा नितान्त अलग है। लेकिन इस सफलतम नाटकों के मंचन के बाद भी उनकी अनुभव यात्रा के अनेक दिलचस्प पड़ाव आया और उन्हें शहरी और आंचलिक कलाकारों के बीच कलात्मक संतुलन बनाने की कठिनाई हुई। खासतौर से राजा चंबा और चार भाई तथा सूत्रधार जैसे नाटकों की प्रारंभिक विफलताओं का एक बहुत बड़ा या संभवतः अकेला कारण यही था। फूड फाउंडेशन की प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अपने इन अनुभवों को निष्कर्ष के तौर पर मैंने इस तरह प्रस्तुत किया। मैं आंचलिक और शहरी कलाकारों के बीच ऐसा सुसंगत संभाव बना पाने में सफल हुआ हूँ जो पहले कभी नहीं कर सका था। पहले इस दिशा में मैंने काम किया था, राजा चंबा और चार भाई और सूत्रधार जैसे नाटकों में, लेकिन परिणाम ये हुआ कि आंचलिक कलाकार शहरी कलाकारों पर हावी हो गए। इसके कारण प्रस्तुति में असंतुलन पैदा हो गया और उसने शहरी कलाकारों की दुर्बलताओं को और अधिक मुखर कर दिया। इस बार हिरमा की अमर कहानी में शहरी कलाकार भी थे जो रायपुर के आसपास के क्षेत्रों के थे, जो छत्तीसगढ़ी कलाकारों की भाषा को अच्छी तरह जानते थे और समझते थे। भले ही वे स्वयं उनकी भाषा को पूरी तरह बोल नहीं सकते थे, उन्होंने पहली बार इस नाटक में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया। लेकिन हिरमा की अमर कहानी में मिली इस सफलता के पीछे भी अनेक कठिनाइयां थीं। हिरमा बस्तर के आदिवासी क्षेत्र की कथा है जिसमें आदिवासी जनजीवन की प्रथाओं, रूढ़ियों, सामाजिक मान्यताओं और उनके मूल्यों के प्रति आस्था और विश्वास के अंतरंग चित्र है। उसकी विरुद्ध शहरी जीवन प्रचलित हुए मान्यताएं हैं जो आदिवासी मूल्यों से निरंतर टकराती हैं। आधुनिक संवेदनाएं आदिवासी संवेदनाओं से कतई मेल नहीं खाती। दूसरी ओर आधुनिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति आदिवासी जनजीवन को अत्यंत पिछड़ा हुआ, आदिम और संस्कारहीन मानता है, जबकि वस्तुतः ऐसा कतई नहीं। आदिवासी लोगों के जीवन मूल्य संस्कार इतने विशिष्ट और दिलचस्प है कि उनको समझे बगैर उसका मूल्यांकन करना असंभव है। हाफिज तनवीर ने आदिवासी जीवन पर लिखे नाटक लिखने से पहले बस्तर के लोगों का, उनके तौर तरीकों का, प्रथाओं तथा मान्यताओं का गहराई से अध्ययन किया। वे आदिवासी लोगों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान थे और उनका प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करना चाहते थे। आदिवासी भावबोध का शहरी भावबोध से रिश्ता नहीं, लेकिन उनकी मानवीय संवेदना अत्यंत प्रबल और प्रखर है। हिरमा की अमर कहानी में इन्हीं दोनों संवेदनाओं के टकराव के स्वर है। सतही तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि इस नाटक में सामंतवाद के पोषक तत्व उभर आए हैं जो हमारे महाबोध की कतई स्वीकार नहीं करते, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं। उन लोगों ने जीवन की पूरी ईमानदारी और गहराई से देखे और समझने के बाद निष्कर्ष पर की ओर और ही निकालते हैं। अभी तीन का सृजनात्मक संकट यह शुरू हुआ। उन्होंने चाहे कि इस नाटक की प्राण शक्ति बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ी या अन्य कलाकारों के साथ कुछ आदिवासी कलाकारों को भी साथ लें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते थे। अपनी इस विफलता के बारे में उन्होंने कहा, दूसरी बातों के अलावा मैंने ये भी उम्मीद की थी कि इस नाटक में अभिनय के लिए मैं एक या दो आदिवासी कलाकारों को चुन सकूंगा, भले ही उनकी भूमिका छोटी ही क्यों न हो, लेकिन मैं इसमें विफल हो गया। अपनी विफलता को छिपाने के लिए यह कहना आसान होगा कि आदिवासियों में प्रतिभा नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा आभास होता है कि बस्तर के आदिवासी वैसा अभिनय नहीं कर सकते जो हमारी परिभाषा के अनुसार अभिनय है, क्योंकि उनके जीवन में उसका अस्तित्व ही नहीं है। चरित्र के विभिन्न स्तर, वर्गों में अलग अलग विभाजन, परत दर परत घटनाओं को खोलते जाना और अंततः एक कहानी बन जाना आदिवासी जीवन का अंग नहीं। उनका जीवन पूरी तरह पारदर्शी है, एक सुसंगठित समुदाय का अंग है जिसमें लाभ और हानि में पूरे समुदाय की हिस्सेदारी होती है। कोई भी व्यक्ति मूर्ख, खलनायक या नायक नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं जिसका मजाक उड़ाया जा सके या जिसकी पूजा की जा सके। यदि वे किसी पर हंसते भी हैं तो वह दोस्ती भरी निश्चल हंसी होती है। उसमें अक्सर वे स्वयं भी शामिल होते हैं, उस व्यक्ति की हंसी में जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, यानी वे अपने ऊपर ही खुद हंसते हुए उसका आनंद लेते हैं, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, कपट या अहंकार नहीं होता। उनकी मुद्राओं और भंगिमाओं से यह पूरी तरह समझ में आ गया कि उनका जीवन सामाजिक संघर्ष से पूरी तरह अनभिज्ञ है। भारतीय रंगमंच के संदर्भ में शोध और सर्जन के पारस्परिक आदान प्रदान की प्रक्रिया हरफी तनवीर के रंगकर्म का सबसे दुष्कर पक्ष है। सैकड़ों वर्षों के अंतराल को पाटने के लिए पीढ़ियों के काम को उन्होंने अकेले निरूपित किया है। उनके रंगकर्म के अनेक पक्ष ऐसे हैं जिन पर भारतीय रंग चिंतकों की प्रशंसात्मक दृष्टि तो पड़ी ही है, किंतु विदेशी रंग समीक्षकों के लिए भी वह कम विस्मयकारक नहीं रहे। आधुनिक भारतीय रंगकर्म के विदेशी अध्येता कैनेथ रे ने विश्व प्रसिद्ध रंग पत्रिका थिएटर क्वार्टरली में हबीब तनवीर के रंगकर्म का आकलन करते हुए संक्षिप्त किंतु सारगर्भित शब्दों में जो प्रतिक्रिया की है वह बहुत दिलचस्प है। हबीब तनवीर की कार्यप्रणाली की सफलता का सबसे प्रमुख पक्ष यह है कि उनमें नियंत्रण बनाए रखने की खासी क्षमता है। यह भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नए विचारों के द्वारा आंचलिक कलाकारों को आसानी से वशीभूत किया जा सकता है। लोक नाट्यों पर शहरी प्रभाव ने इस बीच बहुत बुरा असर डाला है। वे कहते हैं, बहुत कुछ अब तक नष्ट हो चुका है, बहुत कुछ नष्ट होने के कगार पर है और बहुत कुछ नष्ट हो सकता है। इसीलिए वे उसके काम में अपनी रीति नीति से थोड़ा सा दखल देते हैं और फिर वे पूरी तरह सारा कुछ उन पर छोड़ देते हैं कि वे अपने तरीके से उसे पेश करें। इस तरह वे अपनी सहजता और जीवंतता को बनाए रखने के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। नया थिएटर के कलाकारों के साथ हबीब तनवीर बहुत दूर तक जाने में सफल हुए हैं। विदेशों की अनेकानेक यात्राओं के बाद उनके रंग में गहरा पाश्चात्य प्रभाव होना लाजमी था, लेकिन वे सावधानी पूर्वक उससे बचते हैं। अपनी जानकारी का इस्तेमाल वे समूह के बीच ज़्यादा असरदार तरीके से करते हैं, या उस वक्त जब नाटकों में अनावश्यक फैलाव आने लगता है तो उससे गति देने के लिए वे अभिनेताओं को बांधते हैं। इस तरह उनके कलाकारों को स्वाभाविक अभिव्यक्ति समझ जाती है, लेकिन उसका दमन नहीं होता। इसी कारण वे उनके देशज स्वरूप को विकसित करने का दिशा निर्देश देते हैं। खंड खंड अनुभवों से निरंतर ऊर्जा ग्रहण करते हुए तनवीर ने अपने निजी मुहावरे का जो मेरुदंड स्थापित किया है वह निस्संदेह अन्यतम है।